रात्रि क्लास चल रहा था, पांच ग्यारह 1966 पांचवें पेज के मध्य में बात चल रही थी। ऊंचे थे ऊंचे भगवंत का इतना ऊंचा स्कूल जिसमें साक्षात भगवान पढ़ावे, और स्कूल में भी न जावे उनको क्या कहेंगे। कोई कहते हैं अभी नहीं जा सकते हैं, तो भी उनके लिए प्रबंध है। अच्छा नहीं जा सकते हैं तो मुरली घर में मंगा लो, अगर अच्छी तरह से लक्ष्य पकड़ा हुआ है कि हमको नर से नारायण जैसा देवता बनना है, ऐसा लक्ष्य पकड़ेंगे तो जो मुरली है उसको समझ भी सकेंगे, नहीं तो कितनी माया के कारण शक्ति होती है, बहुत सुस्ती अलबेलापन आता है। नहीं तो दुनिया में कभी भी कॉलेज या स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो इतनी कभी सुस्ती नहीं होती है। यहाँ देखो जुट के आते हैं, नींद आती है, सामने बैठ करके भी नींद आती है। कहते हैं काम पकड़े, काम पड़ गया, ये पड़ गया, रजिस्टर देखता हूँ तो कोई एब्सेंट, कोई दस रोज ही आते, कोई पांच रोज में आते, कोई तीन रोज आते, कोई बिरला होवे जो रोज आना आने वाला हो। ऐसे है ना बराबर, तो सबका रजिस्टर देखो तो हालत ही ऐसी बुरी लगी हुई है, और उनसे पूछो अरे यहाँ इस विद्यालय में पढ़ाते कौन है, कहेंगे ये भगवान पढ़ाते हैं। अरे स्कूल में रजिस्टर होता है, भगवान पढ़ाते हैं, ऊंचे ऊंचे भगवान कहा जाता है, तो क्यों नहीं पढ़ने आते हो। कहेंगे ये काम था वो काम था, ऐसे काम था। देखो यहाँ ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसे तो अज्ञान काल में भी होते हैं। ये बाबा खुद कहते हैं कि हाँ होते हैं। स्कूल में ही नहीं जाते, यहाँ गया वहाँ चला गया, घर का काम मिल गया, बोला गया भाई जाओ बहन को ये चीज दे आओ, घर में ये काम फला ना कर लो, बच्चे को कहाँ ना कहाँ भेज देते हैं। तो वो बच्चा पिछाड़ा पिछाड़ी में नापास हो जाता है, पीछे देखो बड़े बड़े बिचारे नापास होने के कारण कहाँ देखो, पीछे देखो, जो पीछे से ही पास्ट में आए हुए हैं, छोटे छोटे ऊंचे बैठे होंगे, और जो लंबे लंबे बड़े बड़े हैं वो पिछाड़ी में बैठे होंगे, क्योंकि ना पास हो पड़ते हैं। ये भी बुद्धि में नहीं है, भगवान पढ़ाते हैं। अरे भगवान को तो याद करो, भगवान को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कौन से कर्म? विमाने विपरीत, जो भगवान ने कर्म सिखाए हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति बताई है, भगवान के बताए हुए कर्मों के विपरीत कर्म करते हैं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? कितनी चांसेस होती हैं यहाँ अपन को सुधारने की। अच्छा चलो बच्ची, म्यूजिक बजाया गया, पढ़ाया था राजयोग और राजाओं का राजा बनाया था। क्या पढ़ाया था? ऐसा योग जिसमें राज भरा हुआ है। गीता में लिखा है ना, गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्, गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान माने जानकारी, उसमें भी मुख्य किसकी जानकारी है? राजाई की जानकारी। राजाई की भी जानकारी बाद में होगी, पहले तो बाप की जानकारी, जिस बाप ने जान करके पहचान करके राजाई ली हो, खुद राजाई लेने वाला होगा तो अपने बच्चों को भी देगा, खुद ही राजाई लेने वाला नहीं होगा तो अपने बच्चों को देगा क्या है? धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा, जमींदार होगा तो जमीन का वर्षा देगा, खुद ही जमीन नहीं होगी, खुद ही धनवान नहीं होगा तो उस तरह की प्रॉपर्टी बच्चे को कैसे देगा? तो देखो जो पीछे बैठे हुए हैं बड़े बड़े समझे जाते हैं, वो बड़े बड़े बैठे हुए हैं इस स्कूल में, और पढ़ाई पर उतना तवज्जो नहीं देते हैं, तो राज की बात रह जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पहले पहले बेसिक नॉलेज ही, प्राइमरी नॉलेज ही दी जाती है, यहाँ भी बताया जाता है तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, निराकार हो। निराकार आत्मा का बाप कैसा होगा? है निराकार ही होगा, निराकार से क्या मिलेगा? है निराकार से निराकार वर्षा मिलेगा या साकार वर्षा मिलेगा? निराकार वर्षा क्या होता है? ज्ञान है निराकार, जो निराकार ज्ञान है वो निराकार बाप का वर्षा है, और स्वर्ग जीवन मुक्ति, जीवन में रहते मुक्ति, दुख दर्दों से मुक्ति, ये किसका वर्षा है? निराकार का वर्षा है, निराकार जीवन मुक्ति भोगता है, है? नहीं भोगता। तो निराकार जब स्वयं ही जीवन मुक्ति नहीं भोगता तो अपने बच्चों को कैसे देगा? तो राज की बात बताते हैं, क्या कि निराकार को तो निराकार आत्माओं से सिर्फ है राजयोग के ज्ञान का वर्षा मिलता है। क्या मिलता है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का वर्षा मिलता है, सत्य का वर्षा मिलता है। सत्य कौन है? सत्य को जानने वाला असत्य को भी जानेगा या नहीं जानेगा? नहीं जानेगा। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, क्या कहते हैं? सत्य ही शिव अर्थात कल्याणकारी है, असत्य कल्याणकारी नहीं है। असत्य का अंश मात्र भी होगा तो भी कल्याण ही करेगा। जैसे दूध के बड़े हुए घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, है सारा ही विष हो जाएगा। तो सत्य की जानकारी चाहिए तो 100% चाहिए या परसेंटेज में चाहिए? 100% सत्य की जानकारी चाहिए। तो बताओ इस दुनिया में जो दुनिया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार सिंह से पास होती है, उस दुनिया में वो सत्य कौन है? कोई सत्य होगा या नहीं होगा? और सत्य होगा तो शिव समान कल्याणकारी भी होगा या नहीं होगा? इसलिए कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और बाप बताते भी हैं, आत्माओं का बाप ब्रह्मा मुख से बताते हैं, ऐसा सुंदर और ऐसा श्याम इस सृष्टि में कोई भी नहीं हो सकता। कैसा सत्य, कैसा श्याम, जिसे भक्ति मार्ग वाले भी बोलते हैं श्याम सुंदर। क्या बोलते हैं? श्याम सुंदर। श्याम माने काला, सुंदर माने गोरा। सत्य कर्म करने वाला और उसके अपोजिशन में काले कर्म करने वाला, ऐसा श्याम और सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि इस दुनिया का ये नियम है कि जो आत्मा जितना ही ऊंच बनती है उतना ही तमो प्रधान युग में नीच भी बनती है। सत्य युग में ऊंचते ऊंच और काले कलयुग में नीचते नीच बनती है। तो श्याम का भी ज्ञान चाहिए, सुंदर का भी ज्ञान चाहिए। वो श्याम और सुंदर एक ही व्यक्तित्व का नाम है। यह जैसे ईश्वर की दी हुई बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले समझते हैं कि इस जन्म में श्याम और सतयुग के जन्म में सुंदर बनेगा, तो एक व्यक्तित्व हुआ या दो हुए? दो जन्म हुए तो दो व्यक्तित्व हुए, ऐसे नहीं है। इस दुनिया में जो जितना सच्चा बनता है संग के रंग में आकर के उतना ही झूठा भी बन जाता है, असत्य भी बन जाता है। ये दुनिया का हिसाब ही ऐसा है कि इस दुनिया में एक ही भी मनुष्य मात्र नहीं, जो कलयुग के अंत में आकर के तमो प्रधान झूठ काला न बन जाए। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है, कोई बचता है? है? कोई नहीं बचता। परंतु निराकार आत्माओं का बाप, निराकार शिव बाप सुप्रीम सूल कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया का वासी नहीं हूँ। मैं कहाँ का वासी हूँ? परे से परे धाम का वासी हूँ और सदाशिव मुझे कहा जाता है। ऐसे नहीं, आज कल्याणकारी शिव और कल सारी दुनिया को मार मारने वाला, मार देने वाला अकल्याणकारी अशिव बन जाए। मैं तो तुरीय आत्मा हूँ, किसी के संग के रंग में प्रभाव में प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। बाकी इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब ए टू जेड, कितने भी बड़े बड़े कहे जाते हों दुनिया में, ग्रेट फादर्स कहे जाते हों, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कितनी भी बड़े से बड़ी मानवीय जनरेशन के पिता कहे जाते हों, जैसे क्राइस्ट, लगभग सारी दुनिया की आधी जनरेशन उसे बाप मानती है। किसको? क्राइस्ट को, क्रिश्चियंस अपना बाप मानते हैं। कितनी ग्रेट आत्मा है, वो भी इस दुनिया में आकर क्या बन जाती है? है संग के रंग में आती है या नहीं आती है? आती है। बाप सुप्रीम सोल ब्रह्मा के मुख से बताते हैं कि क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में है इस दुनिया में। बैगर माना भिखारी, जिसके पास न तन की ताकत, न मन की ताकत, न धन की ताकत, घर बार भी नहीं, उसे दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं कितनी भी महान ते महान हो, सब नीचे गिर जाती हैं संग के रंग में। क्योंकि मैं ही आत्मा ऐसी हूँ जिसकी आत्मा का नाम शिव है, जिसका शरीर अपना होता ही नहीं, कभी संग के रंग में नहीं आती। इस तो पतित दुनिया में आता हूँ, पतितम कामी कांटे में आता हूँ, तो भी मुझे क्षण मात्र भी संग का रंग नहीं लगता। इसलिए मैं इस लोक का वासी हूँ, इस दुनिया में आता हूँ, तो भी मेरी बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ धरी रहती है? है ऊंचे ते ऊंचे धाम में रहती है। इस नीची दुनिया में नहीं अटकती। मेरा इस दुनिया में कोई अटैचमेंट नहीं होता। किसका? शिव बाप का, जो आत्माओं का बाप है। बाकी जो भी आत्माएं हैं, इस मनुष्य शक्ति में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सात संग के रंग में आकर के, अटैचमेंट में आकर के नीचे गिरते हैं। तब फिर बताओ, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप कौन होगा जो जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से मुक्त भी रहे? भले सतयुग में रहे, त्रेता में रहे, रजो प्रधान द्वापर में रहे, तमो प्रधान कलयुग में रहे, तो भी संग के रंग में तो आवे, किसके संग के रंग में? पतितों के संग के रंग में आवे, राक्षसी आत्माओं के संग के रंग में आवे, भले पतितम कामी कांटा बने, तो भी यही कहा जाएगा कि उसको भी संग का रंग तो लगता है ना कि नहीं लगता है? है? लगता है। भले नास्तिकों के संग में भी आ दे, जो न भगवान को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, न कोई धर्म ग्रंथ को मानते हैं, न कोई धर्म को मानते हैं, अपने ही अहंकार में रहते हैं, चर्म सीमा का देह अहंकार, जो समझते हैं हम देह हैं, देह के पांच तत्वों का ही विश्लेषण करते हैं, पंचभूतों को ही मान्यता देते हैं, आत्मा कोई चीज नहीं अलग से, आत्मा को मानते ही नहीं। फिर आत्माओं में जो परम पाठधारी परमात्मा है, उसको तो मानने का सवाल ही नहीं। ऐसे अहंकारियों का भी बाप है एक आत्मा, इस सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जो ब्रह्मा के मुख से शिव बाप ने बोला, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। क्या बोला है? पूरा नास्तिक है, अंश मात्र भी आस्तिक नहीं। जैसे सारा शरीर भक्ति मार्ग में विष्णु के सारे शरीर को इस सृष्टि का विराट रूप मानते हैं, सर है सतयुग, बाहें त्रेता युग और नाभि से लेकर घुटनों तक के अंग द्वापर द्वापर हो जाते हैं। क्या हो जाते? दो पुर हो जाते, एक इधर जाता एक इधर जाता, एक राइट ईयर और एक लेफ्ट ईयर हो जाता। द्वैतवादी द्वापुर कहा जाता है और घुटने के बाद पांव तक कलह क्लेश वाला कलयुग शूद्र कहा जाता है। क्षुद्र शब्द से बना शूद्र, क्षुद्र अर्थात नीच पार्ट बजाने वाला, और पांव का अंतिम भाग एड़ी, जिस एड़ी में सारे शरीर का भार जाकर इकट्ठा होता है। वो एड़ी है कलयुग का अंतिम समय, और एड़ी से लेकर के चोटी तक संगम कहा जाता है चढ़ती कला का। चोटी और एड़ी में क्या अंतर है? एड़ी में लिक्विड खून रहता है या नहीं रहता है? है? रहता है। और चोटी में है? चोटी में खून होता है? चोटी में कोई खून नहीं रहता। तो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, जब सारी सृष्टि उसमें भी खास करके तुम बच्चे जो मेरे सन्मुख बैठने वाले रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं, वो सारा ही इस संसार रूपी विषय सागर में डूब जाते हैं। मात्र चोटी बचती है। क्या बचती है? चोटी बचती है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण चोटी कहा जाता, जिस चोटी में संकल्पों का बूंद मात्र भी खून नहीं रहता। क्या संकल्प होते हैं ना, वो बेहद का खून है। जैसे संकल्प होते हैं अच्छे और बुरे, ऐसे खून भी होता है अच्छा और बुरा। शरीर में आधी नसें नाड़ियां अच्छा खून बहाने वाली हैं और आधी गंदा खून बहाने वाली हैं, लेफ्टिस्ट नाड़ियां हैं, राइटियस नाड़ियां भी हैं, जिन नाड़ियों में ये बेहद का संकल्पों का खून बहता है, मनन चिंतन से मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन नहीं करता तो मनुष्य नहीं तो क्या कहा जाता है, जानवर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कहा जाता है। तो देखो, एड़ी से लेकर के चोटी तक का जब संगम युग का सफर करते हो, तो तुम बच्चे कहाँ तक डूब जाते हो, विकारों के पंख में हैं? पूरा ही डूब जाते हो, चोटी बचती है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र कहा जाता है। अव्वल नंबर का शूद्र, शूद्र नीच से नीच। और पहले नंबर का ब्राह्मण ऊंचे से ऊंच, संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता, अपूर्ण ब्राह्मण तो अपूर्ण देवता। इसलिए नौ कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं, क्योंकि नौ ही धर्म है। सच रूपी रंगमंच पर जिन नौ धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, उन कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के बीज रूप बाप, वो भी नौ प्रकार के बीज हैं। सात संसार सागर में, विषय सागर में, विषय विकारों के सागर में पूरे ही डूब जाते हैं। तो उन डूबने वालों में खून रहता है या नहीं रहता है? खून तो रहता है, चलो गंदा ही खून रहता हो, दुष्ट संकल्पों का ही खून बहता हो, खून तो रहता है, लेकिन चोटी में है? चोटी में कोई खून नहीं रहता। जब खून ही नहीं तो उसे चैतन्य कहें या जड़ कहें? है क्या कहें? जड़त्व ही कहेंगे, मुर्दा। इसलिए ब्रह्मा मुख से बोले, ब्रह्मा वाक्य में ही कहा, वेद वाणी में ही कहा, के तुम बच्चे शिव बाबा कहते हो। है क्या कहते हो? भगवान को शिव बाबा, उसमें से शिव को निकाल दो तो क्या बचेगा? है बाबा बचेगा, ग्रैंडफादर चैतन्य बचेगा कि मुर्दा बचेगा? अरे शिव को निकाल दो तो क्या बचेगा? अरे मुरली में कभी सुना नहीं है? शिव को निकाल देंगे तो सब ही बचेगा। शव माना मुर्दा। क्यों कहा मुर्दा? है अरे मुर्दे में डंडा मारो तो हरकत होगी? है नहीं होगी। भगवान बाप आते हैं तो नंबर बार आत्माओं के ऊपर अव्यक्त वाणी में माता के रूप में, ब्रह्मा माता है ना, कितने टांट मारते हैं। ऐसे बने हो कोई वाणी ऐसी है जिसमें टांट ना मारा गया हो? तो सोचना चाहिए कि हम माता पिता जैसा चाहते हैं वैसे बने हैं, बने हैं। जैसे कहते हैं राजयोग की प्रैक्टिस चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में आकारी, मनन चिंतन मंथन करने वाला, और एक सेकंड में निराकारी बन जाए। मोल्ड करने में देर न लगे, ऐसे बने हो तो देखो 80 साल हो गए, ईश्वरीय वाणी सुनते सुनते और हम बच्चे ऐसे संपन्न योगी की स्टेज धारण नहीं कर सके। कर सके है? अमृत वेला का अनुभव क्या कहता है? कितनी देर निर्ध्यात में टिकते हैं, साकार में निराकार की याद में। है कोई का अच्छे से अनुभव अच्छे से अच्छा हो तो बतावे। अमृत बेला खास 2 बजे से लेकर के 4:45-5 बजे तक कितनी देर याद में टिकते हैं, एक्यूरेट याद। जिस याद में साकार में निराकार की याद हो, कौन सा साकार ये भी बता दिया कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, कि सृष्टि पर सदा कायम है एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं है, शिव बाबा है, सदा कायम है इस सृष्टि पर। तो जो इस सृष्टि पर सदा कायम होगा व्यक्तित्व के रूप में कि अव्यक्त बिंदु के रूप में है, व्यक्तित्व के रूप में व्यक्त को आंखों से देखा जाता है, इन स्थूल आंखों से। अव्यक्त को इन आंखों से नहीं देखा जाता। जिस अव्यक्त को देखा जाता है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसी को कहेंगे सत्य। जैसे गीता में भी कहा है ना सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। इस सृष्टि में सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। जो सत्य है वो कभी लोप नहीं होता। तो जो लोप ही नहीं होता साकार में निराकार, वो कौन सा साकार में निराकार है? शिव बाप है, आत्माओं का बाप, या कोई मनुष्य सृष्टि का बाप है? है मनुष्य सृष्टि का बाप है। जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को कहा शिव बाबा को याद करो, क्या कहा? किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो, ये नहीं कहा शिव बाप को याद करो। कहा है? क्यों? शिव बाप ऊंचे तो ऊंचे नहीं है, हा? अरे ऊंचे ते ऊंचे को याद करना है या नीचे ते नीचे को याद करना है? फिर ये क्या चक्कर में डाल दिया है? साकार रूप साकार की बात है,
साकार दुनिया की बात है।
हाँ वो तो ठीक है। इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे होते हैं। इस सृष्टि के अलावा और कोई लोक नहीं है जहाँ ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे होते हो। तो देखो जिस अविनाशी शिव बाबा को याद करना है, सत्य को याद करना है या झूठ को याद करना है? सत्य को याद करना है। जो इस सृष्टि में सदा सत्य है, कहाँ कहाँ सदा सत्य है? इस मनुष्य लोक में सदा सत्य है, कभी यह सत्य नहीं। उस सदा सत्य को जो आत्माओं के बीच सदा सत्य आत्मा है, कौन? एक बोलता शिव बाबा, एक बोलता शिव बाप है, शिव बाबा। इस सृष्टि में हो या इस सृष्टि से परे हो, जो सदा सत्य है वो कौन है? शिव बाप। वो शिव बाप को याद करने के लिए नहीं बोला, किसको याद करने के लिए बोला? शिव बाबा को याद करने के लिए बोला। क्यों बोला है? अरे जो सदा शिव है ही नहीं, सदा शिव है ही नहीं, उसको याद क्यों करें? अरे मनुष्य सृष्टि का बाप सदा शिव है, सदा शिव माना सदा सुख का सागर है, एक ही आत्मा है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आकर के पार्ट बजाती है तो सदा शिव का पार्ट बजाती है, कभी यह कल्याणकारी नहीं बनती। और प्रजापिता संघ के रंग में आकर के कैसा बन जाता है? है? पतितम कामी कांटा बन जाता है, तो दुखदाई हुआ या सुखदाई हुआ? है? दुखदाई हुआ। तो सदा शिव कौन है? तीनों लोकों में चाहे दुखदाम हो, चाहे सुखदाम हो, चाहे शांति धाम हो, है? संपन्न माने उसकी संपन्न स्टेज है शिव की, तो असंपन्न भी हुआ होगा। शिव की संपन्न स्टेज कही जाए तो कभी असंपन्न भी तो हुआ होगा, नहीं? तभी तो कहेंगे संपन्न स्टेज। अरे वो तो कभी असंपन्न है ही नहीं, था ही नहीं। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत, हो सी भी सत, माना तीनों कालों में वो सत्य है। वो तीनों धाम में सत्य है, त्रिलोकी, त्रिलोक में सत्य है, लेकिन वो दुखधाम रूपी द्वापर कलयुग में तो आता ही नहीं। सतयुग त्रेता रूपी सुखधाम में तो आता ही नहीं है? कहाँ का वासी है? सुखधाम का वासी है, दुखधाम का वासी है, त्रिलोकीनाथ है, कौन से लोक का स्वामी है? हैं? शिव की बात करते हैं, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। तो बाप कहते हैं, तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। नंबर बात, मैं तो तीन लोगों का नाथ नहीं बनता हूँ। हाँ, संगम पर आता हूँ, जहाँ शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, काई काई की, सुखदाम की भी और दुखदाम की भी और सत्यधाम की भी। तो बताओ, संगम में आता हूँ तो सुखधाम स्थापन करके जाता हूँ, शिव की बात हो रही है, या बीच में चला जाता हूँ? सुखधाम स्थापन करके जाता हूँ, शांति धाम स्थापन करके जाता हूँ। जाता है शांति धाम स्थापन करके? जाता है, जाता है। अरे नहा नना, अरे अकल चकराई रही है क्या? इकट्ठे जाएंगे। ये नहीं बोला तुम बच्चे शांति धाम को, परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे? नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? तो तुम बच्चे जो उतार लेंगे शांति धाम को इस सृष्टि पर, वो नंबर वार होंगे या एक साथ उतार लेंगे? तो अब्बल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? हैं? कौन होगा? जिसे कहा राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, बेहद का बाप, दो ही बेहद के बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तो जो मनुष्यों का बाप है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर संगम युग में सदा सुखधाम का वासी है। है? संगम युग में आदि से लेकर अंत तक सदा सुखदाम का वासी है। अरे है, यज्ञ के आदि में फेल हुआ कि नहीं? तो है कि नहीं है? सदा सुखधाम का वासी है या नहीं? संगम में है? है? मन की बात है। माने शिव बाबा जो कहते हैं वो मन के आधार पर कहते हैं, बुद्धि के आधार पर नहीं कहते कि राम फेल हो गया। मन मौजी है शिव बाबा, कभी खेत की कहता है, कभी खलियान की कहता है, मन मौजी है ऐसे। अरे इसीलिए कहा कि मैं जो राजयोग सिखाता हूँ, ये सीख है, ये सिखामणि गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्, गुह्यते गुह्य राज बताता हूँ। और बच्चों को कहता भी हूँ। जब कोई को सच्चाई सुनाते हो, सत्य माने ज्ञान सुनाते हो, तो एक ही बात पहले पहले सुनाओ, पक्की कराओ। क्या बात? बाप का परिचय। वो बाप का परिचय देते ही नहीं है। किसी मुरली में कहा, तुम बच्चे सत्य बाप का परिचय देते हो, या इस बच्चे ने सत्य बाप का परिचय दिया? किसी मुरली में कहा है? नहीं कहा। बेसिक ज्ञान लिया, बेसिक ज्ञान लेने वाले बच्चों ने बाप का परिचय दिया, तो बेसिक नॉलेज तक ही सीमित होगा या ऊंची पढ़ाई तक पहुंचेगा? है बेसिक नॉलेज का ज्ञान, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, तो ये ज्योति बिंदु त्रिमूर्ति शिव में ये बिंदु रखा है ऊपर, ये हमारा बाप है। 32 गुण भी दिखाई दिए। क्या है? गुणों का सागर है। क्या है? गुणों का सागर है। और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? निराकार को निर्गुण कहते हैं या सगुण कहते हैं? क्यों? अरे साकार शरीर होगा तो सगुण और निर्गुण होगा। साकार शरीर ही नहीं तो न सगुण होगा न निर्गुण होगा। तो भले अब तक भी बेसिक ज्ञान में चलने वाले परिचय तो देते हैं बाप का, लेकिन अधूरा परिचय देते हैं या पूरा परिचय देते हैं? अधूरा परिचय देते हैं। गुणों का सागर जब कहा जाता है तो सागर में क्या कचरा नहीं होता है? कचरा भी तो आगाध है। रतन भी आगाध भरे पड़े। आत्माओं का बाप शिव गुणों के संघात से परे है, त्रिगुणातीत है। तीन गुण जो होते हैं वो साकार में होते हैं, साकार शरीर में होते हैं। देवताओं के जो साकार शरीर होते हैं, सतयुग में सत्व गुण होते हैं, द्वापर में रजोगुण होता है, और कलयुग में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। ये प्रकृति के तीन गुण हैं, या कर्ता के तीन गुण हैं, एक है कर्ता, कृति करने वाला, कृति माने कार्य, एक होता है प्रकृति, प्रकष्ट कर कार्य, प्रकष्ट रचना, कर्ता की प्रकष्ट रचना। तो शिव करता है या अकर्ता है? अकर्ता है। जब अकर्ता है, कोई कर्म के प्रभाव में नहीं आता, कोई कर्म या कर्मेंद्रिय का रस ही नहीं भोगता, अकर्ता भी है अभोक्ता भी है। और हम मनुष्य आत्मा हैं, भोगता हैं, इंद्रियों का रस भोगते हैं। और कर्ता भी है, क्या हम आत्मा हैं, मनुष्य आत्मा है, क्या हैं? कर्ता हैं। हर एक पिता अपनी जो पहली रचना पत्नी रचता है वो उसकी प्रकृति है उस जन्म में। प्रकृति जड़ होती है या चैतन्य होती है? जड़त्व में ही होती है। और प्रकृष्ट कृति अर्थात प्रकृष्ट रचना को रचने वाला रचनाकार कर्ता चैतन्य आत्मा है या जड़ है? चैतन्य आत्मा। और आत्माओं के बीच ऐसी आत्मा कौन है जो कर्ता भी नहीं है अकर्ता है, भोक्ता भी नहीं है अभोक्ता है? लेकिन परम पुरुष कहा जाता है, पुरुष माने आत्मा, पुरु माने शरीर रूपी पुरु, पुरी श माना शयन करने वाला, आराम से रहने वाला। सुप्रीम सोल जिस तन में भी आता है बेआरामी महसूस करता है, है? आनंद स्वरूप है या परेशान रहता है? है आनंद स्वरूप है और सदा आनंद स्वरूप है। संगम में जो रिहर्सल का टाइम है, शूटिंग का टाइम है, चारों युगों की रिकॉर्डिंग का टाइम है, कैसा भी तमोप्रधान समय हो, रिकॉर्डिंग में, शूटिंग में, कैसा भी सात्विक समय हो, वो उस समय के प्रभाव में आता है क्या? है? नहीं आता है। इसलिए वो एक ही तुरीय आत्मा है जिसको किसी आत्मा के साथ टैली नहीं किया जा सकता। बाकी जो मनुष्य सृष्टि में आत्माएं हैं, खासकर मनुष्य आत्माएं, वो सभी आत्माएं क्षरित होने वाली हैं, पतित होने वाली हैं, नीचे गिरने वाली हैं, संग के रंग से, या अक्षर हैं। अक्षर मनुष्य सृष्टि में है, एक ही आत्मा है नहीं, बनती है कैसे? योग बल से। और शिव को योग लगाने की जरूरत ही नहीं, शिव योगी बनने का रास्ता बताता है, ज्ञान देता है, वो ज्ञान का अकूट भंडार है। उस भंडार में से कोई सारा ज्ञान का भंडार निकाल ले तो भी पूरा का पूरा ही बचता है। और वही शिव जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है कलयुग के अंत में, और पर्दे के पीछे रह करके गुप्त पार्ट बजाता है डायरेक्टर के रूप में, डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है ना, गुप्त पार्ट बजाता है, तो जब तक गुप्त पार्ट बजाता है तब तक समझो पुरुषार्थ करने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें से कोई भी शिव समान नहीं बना। क्या ये शिव बाप का विरुद्ध है? मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बना कर जाता हूं। तो भले अभी 80 साल हो गए, वो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहने वाला सबको इन आंखों से दिखाई नहीं देता, जिनको नंबर बार ज्ञान चक्षु मिले हैं उन्हीं को दिखाई देता है। तो वो इस सच रूपी रंगमंच पर साक्षात प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया या नहीं लिया? अरे लिया। कब? 36 में, 47 में, 76 में, बोला है ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में ही बोल दिया। क्या बोला है? मैं जब आता हूं, मेरा प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब होता है तो एक सेकंड में 10 से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या बोला? सुना या भूल गया? दूसरी बात, मैं जब आता हूं तो राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। देर नहीं लगती किसको, जनक को। जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला, जन्मदाता। तुम सब सीताएं हो नहीं, अरे तुम सब क्या हो, सीताएं हो। सीताओं का बाप का नाम क्या, जनक। तो कौन साबित होता है जनक, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ही जनक साबित होता है, लेकिन पुरुषार्थ जीवन में नहीं। क्या पुरुषार्थी जीवन में संपूर्ण नहीं कहेंगे, संपूर्ण कहेंगे नहीं, पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, किसके लिए कर रहा है, आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा है। इसका मतलब आत्मा का कल्याण हो गया या नहीं, नहीं हुआ। आत्मा संपन्न नहीं बनी, तो जब वो आत्मा संपन्न बनती है, शिव समान निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बनती है, तो उसका गायन खासकर भारत में और आम विदेशों में भी शिव बाबा के रूप में है। गायन ही नहीं पूजन भी है। पूजन पवित्र का होता है या अपवित्र का होता है, पवित्र का होता है। तो त्रिमूर्ति में वो एक शिव बाबा कौन है जो साकार और निराकार का मेल है, है? हाँ जी, जो आज सारी दुनिया में खुदाइयों में खास भारत में भी सर्वाधिक लिंग मूर्तियां मिली हैं, जिसको गीता में अव्यक्त मूर्ति ना कहा गया है। कैसी मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति, ऐसी मूर्ति जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन मूर्ति है। मूर्त माने साकार या निराकार, साकार मूर्ति है। फिर अमूर्ति क्यों कहा, अमूर्त इसलिए कहा कि उसमें हाथ पांव नाक आंख कान कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां कुछ भी नहीं दिखाई गई। किसमें, लिंग में नहीं देखने में आती। कब की बात है, संपन्न स्टेज की बात है, शंकर की बात नहीं है। जो भी प्राचीन मंदिर हैं शिव के, उनमें बीच में मुखिया शिव बैठा हुआ है और आजू बाजू में देवताओं की मूर्तियां हैं, उन देवताओं की मूर्तियों के मुख्य स्थान पर शंकर का मूर्ति दिखाई जाती है। तो आजू बाजू में जो भी देवताएं या महादेव बैठा है, छोटे मोटे देवताएं या महादेव भी, उन सब का मुखिया मंदिर में कौन हुआ है? कौन हुआ है? अरे मंदिर में यादगार किसकी दिखाई गई? शिवलिंग हुआ। तो शिवलिंग जो भारत में गांव गांव में शहर शहर में खास दिखाया जाता है, कोई विद्वान पंडित आचार्य से पूछो ये क्या है, क्या शिवलिंग है? अरे शिवलिंग है, ये तो ठीक है, कहते हैं शिवलिंग तो जरूर शिवलिंग है, शंकर लिंग नहीं है। और ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में भी बोला, क्या बोला? मेरे लिंग की ही पूजा होती है। क्या? काय की पूजा? लिंग की ही पूजा होती है, नाक कान आंख टांग की पूजा नहीं होती। काय की पूजा होती है? लिंग की ही पूजा होती है, और कोई अंग की पूजा नहीं होती है, मेरा लिंग रूप ही पूजा जाता है। शंकर की मूर्ति भी पूजी जाती है। क्या? शंकर की सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन मेरा लिंग ही पूजा जाता है। कहने वाला कौन है? शिव बाप कहने वाला, मेरा लिंग पूजा जाता है, मेरा इसका नहीं, इसके फॉलोअर्स का भी नहीं, किसका उनका नहीं, कौन उनके फॉलोअर्स का भी नहीं पूजा जाता, कौन? विधर्मी धर्म पिता है या उनके फॉलोअर्स? मेरा लिंग पूजा जाता है। अरे किसने कहा है? शिव बाप ने कहा। पूछो शिव बाप से, तुम्हारा लिंग होता है? हैं? होता है? तुम्हारे नाक आंख कान पांव हो कुछ भी होते हैं? हैं? तुम्हारे तो कोई शरीर ही नहीं होता। तुम तो कहते हो मेरे शरीर का नाम ही नहीं है। अरे हो तो उसका नाम भी हो। हैं? है उसका शरीर है ही नहीं, तो इंद्रियां भी है ही नहीं, उसको अपनी इंद्रियां नहीं है, लेकिन मेरा किसके लिए कहा है? हाँ, हर एक बाप का मेरा शब्द जब आता है तो ज्यादा अपनत्व है, दुनिया का कोई भी बाप हो, कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा राजा हुआ हो, उसका अपनत्व इस दुनिया में किसके ऊपर जाता है? बड़े बच्चे के ऊपर जाता है। ये मेरा बच्चा है पहले, अव्वल नंबर का बच्चा ये है पहलौटी का। हिस्ट्री में भारतीय राजाओं ने सदैव बड़े बच्चे को ही वर्षा दिया। तो जो कहता है मुख से, क्या कहता है, है? मेरे लिंग की पूजा होती है, तो कहने वाला शिव जरूर है, लेकिन उसका मेरा कौन है, बड़ा बच्चा कौन है, है? मनुष्य आत्माओं में, मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़ा बच्चा है कौन है, प्रजापिता जिसे कहा जाता है, वो मेरा बच्चा है। वो मेरा बच्चा जैसे मैं सदाकाल हूं, बच्चा भी सदाकाल है क्या, है? सदाकाल है, सदा ही सृष्टि पर कायम है। मेरा क्यों कहा, हम 500-700 करोड़ आत्मा हैं या 4 लाख 4.5 लाख रुद्रमाला के मणके या 16,000 गोप गोपिया या अष्टदेव, तेरे नहीं है क्या, है? मेरा कह करके एक आत्मा की तरफ ही क्यों अपने तो साबित कर दिया, ये पार्शियलिटी नहीं है क्या, है? पक्षपात नहीं है क्या, है? मेरा लिंग अरे और बच्चे लिंग रूप नहीं बनते क्या संपन्न स्टेज में, माना एक आंख रह जाती है, है? एक कान रह जाता है क्या, हाँ मतलब एक ही आत्मा है, जिस आत्मा को, जिस बड़े बच्चे को आत्मा रूपी बच्चों के बीच मैं, जो मेरे पास भंडार है, उस भंडार का वर्षा देता हूं। सबको वो वर्षा नहीं देता हूं। कोई कहे प्रूफ, प्रूफ होना चाहिए कि नहीं, नहीं होना चाहिए। बाप तो कहते हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो क्या प्रूफ है, है? क्या राम, क्या बोला, नॉलेज? अरे आसाराम बापू आत्मा नहीं है, हा? राधा स्वामी का जो मुखिया है सत्संग का, वो आत्मा नहीं है, हा? हंसा जी महाराज आत्मा नहीं है, है? शिव शंकर
का नाम ही शिव के साथ
जुड़ा है। अरे किसी का भी नाम अभी कोई पाता है किसी को कौन है शंकर? कोई छाती ठोक के बताएगा ये है शंकर? कोई साबित करेगा? अरे करेगा साबित है? अरे साबित करेगा या नहीं साबित करेगा? कर सकता है या नहीं कर सकता है? है?
खुदा है खुद ही करेंगे।
कौन है खुदा? जिसकी खुदाई की जाए खुदाई तो शिवलिंग की सबसे जास्ती हुई है। नग्न मूर्तियां शंकर या तीर्थंकर की तो कम मिली है, ज्यादा खुदाई किसकी हुई है? शिवलिंग की ज्यादा खुदाई हुई। तो कौन है खुदा? जो खुद आता है, है? शिव बाप खुदा है, वो खुदा आता है। और खुदा शब्द कौन से धर्म में बोला जाता है? हैं? मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म में? तो वो उसे जानते हैं, उस निराकार को, उसके कर्म को, नाम रूप गुण धाम को जानते हैं। ऐसे ही खुदा है कि खुदा आया, बिना बुलाए आया। उन्होंने कभी बुलाया था? है? सुप्रीम सोल बाप तो ब्रह्मा मुख से वेद वाणी में बोलते हैं कि मैं बुलाने से नहीं आता हूँ। क्या? मैं बुलाने से नहीं आता हूँ। और जो बुलाते हैं है? जो बुलाते हैं। और कोई ऐसे भी हैं जो नहीं बुलाते हैं? जो बुलाते हैं उनके पास आता हूँ। नहीं, क्या कह के बुलाते हैं? हैं? पतित पावन सीताराम कह के बुलाते हैं ना? पतित पावन शब्द ही क्यों लगा है सीताराम से पहले? हैं? पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला नाम दे दिया सीताराम। तो पतितों को पावन बनाने वाला संग के रंग से पावन बनाता होगा या बिना संग के रंग से पावन बनाता है? है? संग के रंग से पावन बनाता है। और दुनिया में ऐसी कौन सी इंद्रिय है जिस इंद्रिय का संग का रंग स्त्री और पुरुष का जन्म दे देता है? एक ही अंग है जिसे कामांग कहा जाता है। स्त्री सारा जीवन जिस कामांग को याद करती है सुख लेने के आधार पर, अंत समय में क्या याद आता है? अंतमते सोगते। तो किसका जन्म मिलता है? पुरुष का जन्म मिलता है, क्योंकि पुरुष अंग को याद किया, पुरुष अंग से जीवन भर सुख लिया तो याद आता है, वो ही पुरुष जन्म मिलता है। इतना गहरा प्रभाव है उस अंग का। ऐसे ही पुरुष याद करता है जिस अंग से ज्यादा जीवन भर सुख लिया, अंत समय में वही अंग याद आता है।
तो कौन सा जन्म मिलता?
स्त्री जन्म मिलता।
तो
कौन से अंग की बलिहारी हुई? ज्यादा प्रभाव कौन से अंग का पड़ता है जीवन भर? काम अंग का पड़ता है। इसलिए बताया कि इस दुनिया में भक्ति मार्ग में भी एक ही है मनुष्य आत्मा के रूप में, जो काम को भस्म करता है, और कोई भी काम को भस्म नहीं कर पाता। और काम को भस्म करने के लिए कौन सी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करता होगा? है काम इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करता है। क्यों? स्त्री क्यों नहीं? स्त्री क्यों नहीं कर सकती काम अंग को पूरा कंट्रोल? है हाँ, प्रबल तो होता है, स्त्रियों में भी प्रबल होता है, पुरुषों में भी प्रबल होता है। प्रबल नहीं होता है तो अंत मते सो गते कैसे हो जाती? प्रबल तो है, लेकिन स्त्री रूप धारण करके भगवान संसार में क्यों नहीं प्रत्यक्ष हुआ? है? है? क्या पुरुष कंट्रोल नहीं कर सकता है और स्त्रियां कंट्रोल कर लेती हैं, क्योंकि उनमें लज्जा ज्यादा रहती है। पुरुष निर्लज्ज होते हैं, इसलिए पुरुष नंगे भी देखे जाते हैं। जैनियों में देखो, हिंदुओं में नागा बाबाओं को देखो, पुरुष ही नंगे होते हैं निर्लज्ज होने के कारण। स्त्रियां कभी नंगी नहीं होती हैं। इसका मतलब हुआ ज्यादा पतित तो कौन हुआ? पुरुष है या स्त्री? पुरुष ज्यादा पतित होते। इसलिए कन्याओं माताओं को झंडा मिलता है भगवान की ओर से कि तुम ही स्वर्ग के गेट खोल सकती हो। ये पुरुष साथ दुर्योधन दुशासन है, चाहे त्रिदेव ही क्यों न हो, चाहे ब्रह्मा हो या शंकर हो, पुरुष है या स्त्री है, पुरुष रूप में है, वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। जो सबसे जास्ती पतित बनते हैं उस पतित को ही पावन बनाने में बड़ी बात है, बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा भगवंत साबित होता है, या जो पावन है उनको पावन बनाने में ऊंचे से ऊंचा भगवंत साबित होता है। बड़ा काम क्या है? जो पतित से पतित है उसको पावन बनाना, यही बड़ी बात है। इसलिए इस दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, पुरुष जो दुर्योधन दुशासन है, दुष्ट युद्ध करते हैं विकार भोगने के मामले में, स्त्री तो अबला हो जाती है, अबला बनाई जाती है, तो स्त्री के लिए नहीं बोला, पुरुषों के लिए बोला। सब दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, दुष्ट शासन करने वाले हैं, दुर्योधन दुशासनों की तरह। और मोस्टली कन्याएं माताएं हैं द्रौपदी, द्रौपदी पुरुषार्थ करने वाली जो भी सहयोगी कन्याएं माताएं हैं पांडवों का सहयोग करने वाली, उनका पद ध्रुव है, निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। भगवान बाप कहते हैं कि ऐसी महापतित दुर्योधन दुशासनों को उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मुझे आना पड़ता है। किसको कंट्रोल करने के लिए हैं? किसको कंट्रोल करने के लिए है? इंद्र दुर्योधन दुशासनों की इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। इंद्रियां शरीर में होती है, शरीर को रथ कहा जाता है। तो मैं आता हूं तो जो इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ करते हैं, सद्भाग्य बनाने का, श्रेष्ठ भाग्य अर्जन करने का कार्य करते हैं, अर्जुन बनते हैं, ज्ञान अर्जन लेते हैं, उनमें से कोई एक है जिसका मैं रथ लेता हूं। क्या? किसका रथ लेता हूं? है अर्जुन का रथ लेता हूं, जिस रथ के लिए बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है यही धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र है। क्या है? धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, छोटा मोटा या सबसे बड़ा? सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र। क्या नाम दिया है? महाभारत। क्या नाम दिया? महाभारत युद्ध। धर्म की धारणाओं का युद्ध, धारणाओं के आधार पर अलग अलग जो धर्मों में कर्मकांड बने हुए हैं उनका धर्म युद्ध, उसका मूल क्षेत्र कौन बताया, मूल स्थान कौन बताया? एक ही शरीर रूपी रथ है जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कर्मों का क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र। दुनिया में अनेक धर्म फैले हुए हैं, उन धर्मों के आधार पर अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे विदेशियों में धारणा है शरीर छोड़ने के बाद मुर्दे को जमीन में गाड़ देना चाहिए, और हिंदुओं में धारणा है जला देना चाहिए। जरूर इन दोनों बातों का फाउंडेशन कहां पड़ा होगा? संगम में ही फाउंडेशन पड़ता है। जो ब्राह्मण दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के आए हैं, चाहे वो बीज रूप हो चाहे वो आधार मूर्त जड़े हो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के आई हुई आत्माएं अपना देहभान छोड़ पाएंगी? देह को मिट्टी कहा जाता है, वो देह रूपी भान अर्थात मिट्टी का अभिमान छोड़ नहीं पाते, शरीर रूपी मिट्टी का अभिमान नहीं छोड़ पाते, संपूर्ण आत्मा नहीं बन पाते, इसलिए देह अभिमान की मिट्टी में ही गड़ जाते हैं और उनके कम जन्म हो जाते हैं। आत्म की स्थिति धारण नहीं कर पाते, संपन्न आत्मा नहीं बन पाते, अविनाशी आत्मा नहीं बन पाते, इसलिए पूरे 84 जन्म नहीं लेते। और ऐसी कमजोर आत्माएं जो दूसरे धर्मों की बीज हों, चाहे दूसरे धर्म पिताएं उनमें प्रवेश करते हों, उनको आधार बनाते हों अपनी धर्म स्थापना के लिए, वो आधार मूर्त आत्माएं और बीज रूप उद्धार मूर्त आत्माएं द्वापर युग से द्वैतवादी युग से उन द्वैतवादी धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के कन्वर्ट होते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, कोई की गिरने की गति धीमी होती है और कोई धक से नीचे उतर पड़ता, जैसे इब्राहिम जिस तन का आधार लेता है वो कौन से युग के आदि में ही कमजोर बन जाता है और दूसरे धर्म की आत्मा इब्राहिम उनमें प्रवेश कर जाता है। हाँ, उसको भी जन्म देने वाला कोई बीज रूप बाप होगा शरीर को, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल। तो जो आधार मूर्त बनता है उस धर्म पिता का फॉलोअर्स कहो परिवार कहो, उसको चलाने का आधार जो बनता है मूल आधार माता हुई ना, वो खास कन्वर्ट हो जाती है उसी जन्म में। उसका बाप कन्वर्ट नहीं होता, और पुराने जमाने में बाप भी मौजूद रहता था और बाप का बाप भी मौजूद रहता था, माने पर बाबा बाबा वो भी मौजूद रहता था। तो बाप हो बाबा हो वो उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध हुए जिसमें प्रवेश किया उसका नाम था सिद्धार्थ, वो आधार मूर्त आत्मा हुई, उसका आधार लिया बौद्ध धर्म स्थापन करने के लिए, उसको कन्वर्ट कर लिया। माता कन्वर्ट होती है, बरगलामी में माताएं आती हैं, कन्याएं आती हैं, या पुरुष ज्यादा बरगलामी में आते हैं? ये मातृ देश है भारत देश, क्या कैसा देश है? मातृ देश, माताओं कन्याओं की यहाँ प्रधानता है, क्योंकि भगवान आकर के माताओं कन्याओं को ऊंचा उठाते हैं। सारी दुनिया कोई भी धर्म की हो, सब धर्मों की मूल रूप पालना करने वाला कौन सा देश है? भारत देश। सभी धर्मों का ओरिजिन भारत है, इसलिए मातृ देश है। माता की गोद में कैसा भी लुच्चा लफंगा चोर डकैत गंदे से गंदा बच्चा हो कर्म करने वाला, माँ उसे अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। ऐसे ही यहाँ ये विदेशी आतताई आए, आक्रामक बनकर के आए, भारत की कन्याओं माताओं को लूट लूट करके ले गए। दास दासी बनाकर रखा, फिर भी भारत में जो भी विदेशी आए, उन विदेशियों का भारत ने स्वागत किया, अपने देश में रखा या निकाल के बाहर कर दिया? है रखा। तरीके से रहना चाहें तो रहें, और रहे। क्रिश्चियंस को भी रखा, मुसलमानों को भी रखा, बौद्धियों को भी रखा। तो ये मातृ देश है, माता की गोद में सभी बच्चे पालना लेने के अधिकारी हैं या नहीं है? हैं? सभी अधिकारी। और इस भारत देश की मुख्य राजधानी कौन सी गाई गई है? दिल्ली। सारी दुनिया में एक दिल्ली ही शहर ऐसा है जहां दुनिया के हर धर्म के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहे बसे पड़े हैं, और हर धर्म के लोगों ने दिल्ली की गोद में रहकर मनमाने तरीके से शासन किया, खून खराबा किया। जो इतिहास प्रसिद्ध है, जितना दिल्ली ने सहन किया उतना किसी ने नहीं सहन किया। इसलिए दिल्ली शहर सारी दुनिया के लिए बोला गया, वेद वाणी में, ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी में, कि दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। क्यों? क्योंकि माताएं ही सबसे नीचे गिराई गई हैं। जड़ को कंट्रोल किया जाता है या चैतन्य को कंट्रोल किया जाता है? चैतन्य को। जानवरों को कंट्रोल किया जाता है, पशु पक्षियों को कंट्रोल किया जाता है, या जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं उनको कोई कंट्रोल कर पाता है? हैं? जड़ को कंट्रोल किया जाता है। तो माताएं जड़त्वमय बुद्धि है, रचयिता है या रचना है? रचना है। रचना में ताकत रचयिता के मुकाबले कम होती है या ज्यादा होती है? कम ताकत होती है। तो सब मनुष्य सृष्टि की जो मूल रचना है वो कौन है? परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, लेकिन मैं जिसे मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। जिसमें पहले प्रवेश किया वो परम ब्रह्म हुआ। वो परम ब्रह्म जड़त्वमयी बुद्धि वाला है, प्रवेश करने वाले के मुकाबले
या चैतन्य बुद्धि है, इसलिए लिंग है। वो लिंग सत्युग में उसकी यादगार स्वर्ण लिंग, त्रेता में रजत लिंग, द्वापर में ताम्र लिंग और कलयुग में लौह लिंग या पत्थर का लिंग के रूप में पूजा जाता है। कैसा पत्थर बुद्धि? जरूर कोई ज्ञान का पॉइंट है जिस पॉइंट को लेकर के वो इस सृष्टि के महामृत्यु तक, मनुष्य सृष्टि के महाविनाश तक पत्थर बुद्धि बनकर रहता है। बताओ कौन सा पॉइंट है जो लिंग के रूप में पूजा जाता है आज भी, जिस लिंग को बोला मेरा लिंग, किसने बोला है? शिव बाप ने बोला, आत्माओं के बाप ने बोला मेरा लिंग। वो जड़क तुम्हारी बुद्धि वाला है या उस पॉइंट को लेकर के जो ईश्वरीय खास डायरेक्शन है उसमें गहराई से मनन चिंतन मंथन करके अपने को परिवर्तित कर लेता है। पॉइंट नहीं याद आया हा? अरे नहीं याद आया, अच्छा अमृत छोड़ बिख काहे को खाए, ये पॉइंट दिया या नहीं दिया? और ये मुख्य पॉइंट है या साधारण पॉइंट है? ये मुख्य राग है या साधारण राग है? है मुख्य राग है। तो जिसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है उस लिंग धारण करने वाली आत्मा को ज्ञान काल में, पुरुषार्थी जीवन में ये पॉइंट पक्का प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो पाता है, हो पाता है या नहीं हो पाता है? अरे शास्त्रों में क्या गायन है? शास्त्रों में गायन है, उसके जीवन का खास पॉइंट का चित्रों में भी दिखाया जाता है। चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। क्या चरित्र किया है? जो काम दुनिया में कोई भी देवात्मा ने नहीं कर पाया, कोई भी मनुष्यात्मा नहीं कर सकी, कोई भी राक्षसी आत्मा नहीं कर सकी, वो काम है उस आत्मा ने करके दिखाया। और इसी कारण उसको विषपाई कहा गया, और इसी कारण शिव बाप को बार बार ये पॉइंट दौड़ाना पड़ता है। क्या है? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। तो बताओ इस पॉइंट को लेकर के उस आत्मा में संकल्पों का खून बहता है या नहीं बहता है? बहता है, बहता है। सारी ज्ञान का पॉइंट्स का मनन चिंतन मंथन कर लेता, लेकिन एक ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन मंथन करके फैसला करके प्रैक्टिकल जीवन में उतार पाता है? पुरुषार्थी जीवन में उतार पाता? अरे उतार पाता है? अरे पुरुषार्थी जीवन में नहीं उतार पाता, इसलिए मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। कौन कहता? किसका मिसाल दिया मुरलियों? एक निर्गुण बालकों की संस्था का मिसाल दिया, बोला वो निर्गुण बालकों की संस्था ये गायन करती है, मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तो फिर आप ही तरस परोई, आप ही माने कौन? शिव बाबा। अरे अपना काम आप ही करो, आप ही माने क्या? स्वयं, आप ही माने स्वयं। इसलिए गीता में लिखा है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। और तरीका बता दिया, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। उत माने ऊपर, हरेक हरण करके ले जा। ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन बार बार नीचे जाती हो, इधर उधर भटकती हो तो भी क्या करे, जबरियन पकड़ के उद्धरे ऊपर ले जाना चाहिए। ना आत्मा नम्बर सादे, मन बुद्धि ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर ऐसा अभ्यास करेगा जबरदस्ती करने का, साधारण पुरुषार्थ से ऊपर जाने वाली नहीं है। क्या करना पड़े हैं? हैं? बलात्कार, बलपूर्वक ले जा, माना एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा दे, तन की शक्ति, तटपुंजिया धन की शक्ति, मन की शक्ति, समय की शक्ति। आज की दुनिया में कौन से बल का ज्यादा महत्व है? समय का बहुत महत्व। समय नहीं देता है कोई देना चाहता, संबंधियों की शक्ति। जीवन में जो आत्माएं संपर्क में आई हैं यदा कदा, उनकी भी शक्ति लगाकर, सब प्रकार की शक्ति लगाकर जबरियन मन बुद्धि ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ले जाए। कब, किस स्थिति में है? कर्म करते हुए, साधारण कर्म नहीं बताया, जो कामेंद्रिय को महाशत्रु बताया, उस काम इंद्रिय का कर्म करते हुए जबरियन ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ऊपर ले जाना चाहिए, नीचे न गिरने दे। ज्योति बिंदु आत्मा अगर विस्मृति हुई, नीचे गिरी, तो खासकर जो पुरुषों में सत्य की शक्ति है, जिस सत्य को दुर्योधन दुशासन रूपी पुरुष रोक नहीं पाते, जिस सत्य को धारण करने वाली कन्याएं माताएं सती कही जाती हैं, क्या वो कौन सा सत्य? अरे पुरुषों में कोई सत्य चीज है? हैं? वीर्य तो नीचे खिसक जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा, वो ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकता। भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा नाली में चला जाएगा। करना क्या है? है? कहां ले जाना है? हाँ, यहां से नीचे न गिरने दे, जिसे कहते हैं ब्रकुटी। कैसी कुटी? बड़ी पूरी कुटी। अगर आत्मिक स्थिति है तो बड़ी पूरी कुटी, और आत्मा नहीं है तो खाली। तो बताया, क्या बताया है? क्या राज बताया है? जो काम इंद्रिय है, उस काम इंद्रिय का ऐसा अभ्यास करने वाली आत्माएं और वो अभ्यास कब पक्का होगा? ये अभ्यास तभी पक्का होता है जब ये दुनिया नाशवान दिखाई पड़े। कितनी नाशवान? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, क्या जड़ पदार्थ हो, चैतन्य हो, जो भी देखते हैं, आज दिखाई देते हैं, कल खत्म होने वाले हैं। ये पक्का निश्चय बुद्धि में बैठ जाए, वैराग आएगा। क्या आएगा? वैराग। राग माने प्रेम, विराग माने विपरीत राग। क्या? जो भी इन आंखों से देखते हैं, अच्छे से अच्छा, जिसमें बुद्धि जाती है, आकर्षण जाता है, वो सब आज देखने में आता है, कल खत्म होने वाला है, जल्दी भी खत्म हो सकता है। ये शरीर छूट जाए वो कुछ पता नहीं। क्या एडवांस वालों का शरीर नहीं छूट सकता है? छूट सकता है। ये शरीर कब छूट जाए वो भी पता नहीं। रास्ता चलते ट्रक टक्कर मार देता है गाड़ी का। तो ऐसा वैराग आना चाहिए, विपरीत राग आना चाहिए। ये दो बातें पक्की होंगी तो आत्मा लगातार ऊपर उड़ेगी। वो कर्मेंद्रिय जिसके लिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, वो इंद्रिय भी कंट्रोल में आ जाएगी। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, जो जितना अटेंशन दे, उतना ही प्राप्ति करेगा। कोई कहे कन्याएं माताएं क्यों नहीं प्राप्ति कर सकेंगी? वो विश्व की मालिक क्यों नहीं बन सकती? बोलो है? अरे कन्याएं माताएं आत्मा नहीं है क्या? है रुद्रमाला के मणके नहीं है क्या? है ना? वो क्यों नहीं बन सकती? है कहे के कारण? वो के कारण? अच्छा अच्छा चलो माताओं की बात छोड़ दो, कन्या है? कोई कन्या भगवान बन जाए? कन्याओं में देवान ज्यादा होता है, माताओं में नहीं होता है। माना स्त्री चोला जो है वो खास करके रचना बनती है पहली पहली, क्या वो अब्बल नंबर रचयिता इस दुनिया में भी नहीं बनती। तो जो वेद की नई दुनिया रची जा रही है उसमें भी रचयिता के रूप में स्थान नहीं मिल सकता। तो कन्या माताएं कहें हमारा क्या दोष, हमको ये दंड क्यों मिल रहा है जो हम ऐसा वर्षा नहीं प्राप्त कर सकते? कोई दोष है या नहीं है? कोई दोष नहीं। अरे कोई दोष नहीं माना पूर्व जन्म भूल गया या याद है? है पूर्व जन्म भूल जाता है, आत्मा भूल जाती है कि हम आत्मा हैं, विदेशियों की तरह, जैसे वो देह को पंचभूतों को बहुत महत्व देते हैं, पंचभूतों का ही विश्लेषण करते हैं, आत्मा के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, है ही नहीं। ऐसे ही ये भाव है क्या, स्त्री जाति का भाव वो हटता ही नहीं, देहभान का भाव पुरुषों में ज्यादा रहता है या कन्याओं माताओं में ज्यादा रहता है? क्यों कारण? बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? है हैं? सेफ्टी से रहना है। अच्छा हम एक रिवाल्वर अपने पास रख लेंगे, कोई चोरी डकैती करेगा तो मार रहे, बाप ने भी बोला कोई भी टच करे जोर से झापड़ मारो, फिर भी न माने तो जोर से चिल्लाओ बाबा बाबा बाबा, भले सारा मोहल्ला जल जाए।
आकर के पूछे क्या हुआ था, अरे भूत आया था, भूत नहीं आई थी, बोल ना।
तो वो तो सामान्य बात हुई, वो कोई हथियार लेके नहीं आते हैं। अगर हथियार लेकर के कोई हमारे घर में घुसेगा और वो हिंसा पर उतर आएगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे या बौद्धियों की तरह हाथ उठा देंगे, बीवी बच्चे बाल बच्चों को बर्बाद कर जाओ, हैं? मुकाबला करेंगे। तो जूडो कराटे नहीं सीखेंगे, रिवाल्वर धारण नहीं करेंगे, करेंगे करेंगे है? माताओं में कन्याओं में दया का भाव, धर्म की धारणा का भाव ज्यादा होता है या भाइयों में ज्यादा होता है? है माताओं कन्याओं में ज्यादा होता है, भाइयों में उतरा नहीं होता है, बड़े क्रूर होते। तो बताओ ऐसी स्थिति आ जाए तो जान से मारने में हाथ तो नहीं कप कप आ जाएगा है? नहीं है, कैसे कप कप आ जाएगा, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? महाकाली के बच्चे हैं। बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया है, क्या क्या डायरेक्शन दिया है? विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूप बनना है, जैसे महाकाली सारी दुनिया में रावण संप्रदायों से भर जाती है तो सारी दुनिया की मारकाट मचा देती है, सारे जगत के ऊपर कंट्रोल करती है, राज करेगा खालसा पूरा ही कंट्रोल कर लेती है। यज्ञ के आदि में भी 47-47 तक आते आते ज्ञान यज्ञ के संगठन को जिसे ओम मंडली कहा गया, पूरा का पूरा कितने किसने अपने हाथ में ले लिया था है? बड़ी माँ ने या छोटी माँ ने या कोई दूसरी माता ने कन्या ने, बड़ी माँ ने ले लिया। ऐसे ही 47 से ब्राह्मणों की दुनिया का दूसरा संगठन शुरू हुआ। पहला संगठन खरास हुआ, कौन सा संगठन? ओम मंडली। दूसरा संगठन कौन सा शुरू हुआ? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और खात्मा कब होता है, उसका विघटन कब शुरू हो जाता है? 70 में हो जाता है। ब्रह्मा बाबा ने जब से शरीर छोड़ा, मम्मा ने शरीर छोड़ा तो नहीं हुआ है? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई दूसरे धर्म की अधिष्ठात्री आत्मा निकली या नहीं निकली, जिसने पूरे ब्राह्मण परिवार को अपनी मुट्ठी में ले लिया? और ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद तो टोटल हाथ में ले लिया, नहीं थी कोई है, इतना तक हाथ में ले लिया कि अगर भगवान भी आ जाए तो भी उसका विरोध करके कोई भी ब्राह्मणों की दुनिया की आत्मा को उस बाप को नहीं पहचानने देती, विघ्नों की दीवार बन करके खड़ी हो जाती। समझते हुए भी नहीं समझती, न दूसरों को समझने देती। वो कौन सी धरनी होती है, कौन से धर्म की, इस्लाम धर्म की धरणी होती है, जो बाद में सब मुसलमान बन गए। और उन मुसलमानों में जो पूजा स्थल होता है, तो पूजा स्थल में दीवार सामने खड़ी कर दी जाती है। किसकी पूजा करते हैं? दीवार की पूजा करते हैं। दीवार माने है जो ईश्वरीय ज्ञान के रास्ते में क्या बनकर खड़ी हो जाए, दीवार बनकर के खड़ी हो जाती है। उसी आत्मा के लिए बोला माया बेटी। माया बेटी मधुबन में आ सकती है या नहीं आ सकती? क्यों? अरे बेटी है ना, बेटी को मना किया जा सकता है क्या? नहीं। वो बेटी भी ब्राह्मणों की दुनिया में बोला गया कि जब तंग आ जाती है, परेशान परेशान हो जाती है, तो माया बेटी ज्यादा बुद्धिमान है या जगदम्बा जो भारत की है माता, प्रभावित होने वाली माताओं में से अव्वल नंबर माता? उसका सहयोग लेती है या नहीं लेती है? है? लेती है, जानती है कि ये बाप की बड़ी बेटी है। कौन है? जगदम्बा बाप की बच्ची है ना, वो जगदम्बा जो सारे जगत की अम्बा कही जाती है। पांच जो मुख्य देवताएं हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, इन देवताओं की भी मां है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांच तत्वों की मुखिया है या नहीं है? पांचों तत्व कौन से तत्व में समाये हुए हैं? पृथ्वी में। पृथिव्याति पृथ्वी जो चौड़ी होती जाती है, विशाल रूप धारण करती जाती है, वो पृथ्वी जिसको भारतीय परंपरा में भक्ति मार्ग में किसका अवतार दिखाया गया है? मछली का अवतार दिखाया गया। छोटे से छोटी मछली जो एक हाथ की अंजलि में ही आ गई, वो इतना विशाल रूप धारण करती है कि बड़ी बड़ी नदियां रुक जाती हैं, नदियों का जल स्थिर हो जाता है। और आखिरी कहां डाली जाती है? सागर में डाली जाती है। तो देखो इतनी शक्तिशाली वो है धरणी माता कि जब तामसी रूप धारण करती है, बड़े बड़े भूकंप लाती है। लाती है कि नहीं? क्यों है? क्यों लाती है? क्यों इतनी तामसी नाराज होती है? है? इसलिए नाराज होती है कि सृष्टि में जो देह अभिमानी अहंकारी राक्षस हैं, वो राक्षस अपने देह का अहंकार इतना दिखाते हैं कि एटमिक एनर्जी तैयार करके उसका विस्फोट करने लग पड़ते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो जब एटमिक एनर्जी का विस्फोट होता है तो धरणी हिलती है या नहीं हिलती है? भूकंप आ जाते हैं सारी पृथ्वी पर। और दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन मनुष्यों की जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रही पड़ी है और आगे चल करके और ऊंची अट्टालिकाएं बनती जाएंगी, वो सब अट्टालिकाएं धराशायी हो जाएंगी और सब मनुष्य दब करके मर जाएंगे, सब को खलास कर देंगे। इतना भयंकर रूप धारण करती है और माया इस बात को जानती है। क्या क्या जानती है? कि जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं रुद्रमाला के मण के, उनके ऊपर मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रही हूं, तंग आ गई। तो क्या करती है? पृथ्वी माता का आसरा लेती है, हाथ मिलाई लेती है। और पृथ्वी माता तो जड़ बुद्धि, फटाक से हाथ मिलाई लेती है और सारी सृष्टि का संहार हो जाता है। इसलिए कहा कि शंकर का तो नाम है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर कुछ करता है क्या? अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के? हैं? कर्मेंद्रियों से होता है। शंकर कुछ नहीं करता, कौन करता है विनाश? प्रैक्टिकल में शक्तियां ही निमित्त बनती हैं, चाहे वो माया बेटियों के रूप में हो और चाहे वो जगदम्बा की भुजाओं के रूप में हो। प्रैक्टिकल में निमित्त वो ही बनती है। इसलिए बोला कि मैंने जो राजयोग को पढ़ाया था जिसमें गुह्य तो गुह्य राज छिपा हुआ है, और उस गुह्य ते गुह्य राज को समझ करके जो बाप मनुष्य सृष्टि का बाप सर्व मनुष्य आत्माओं का बाप बन करके इस सृष्टि पर शिव समान रूप धारण करके प्रत्यक्ष होता है। किसके समान? शिव समान। उस राज को बच्चों ने नहीं पहचाना, उस बाप को जब तक नहीं पहचाना है तो पक्के राजयोगी नहीं बन सकते। शिव बाप योगी है? अरे शिव बाप योगी है? उसको योग लगाने की दरकार ही नहीं है, वो तो योग लगाने का रास्ता बताता है। लेकिन ये भी कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं, प्रैक्टिकल में मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं, प्रैक्टिकल में मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो। नंबर वार तो जो बच्चा अब्बल नंबर मास्टर त्रिकालदर्शी बनता है वही आत्मा इस संसार में शिव समान रूप धारण करती है, जो मेरा विरुद्ध है। मैं तुम बच्चों को है आप समान बनाकर जाऊंगा। तो तुम बच्चों में से अब्बल नंबर जो बच्चा पहले पहले बाप आत्माओं के बाप समान बनता है, तो उस बच्चे को मैं क्या करता हूं, सारा वर्षा विश्व की बादशाही का सौंप देता हूं। बड़े बच्चे को और बड़ा बच्चा भारतीय परंपरा में क्या समझा जाता है, बाप समान समझा जाता है। जिसका चित्र राम की राजगद्दी में दिखाया जाता है, चित्र देखा नहीं देखा, जिस राजगद्दी में बाप समान बनने वाले राम बाप की जो छोटे छोटे भाई हैं, वो दास दासी बनकर के बैठे हुए हैं, क्या कोई कोई चमर डुलाए रहा है, पंखा कर रहा है, कोई पांव पखार रहा है, पांव की धूल धो रहा है, कोई छाया कर रहा है। तो देखो बाप के सामने बच्चे क्या बन जाते हैं, है बाप के लिए जो भी बच्चे हैं, चाहे बड़े बच्चे हो चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े से बड़ा बच्चा भी हो, तो भी बाप के सामने क्या है, है? क्या है, बंदा है। मालिक तेरे बंदे हम, बाप मालिक है और बच्चे बंदे हैं। तो यही परंपरा बड़े भाई के प्रति चलती रहती है। सृष्टि के आदिकाल में जब सात्विक की सृष्टि रची जाती है, वही सृष्टि जब तामसी बन जाती है, तो औरंगजेब जैसे बच्चे पैदा होना शुरू होते हैं। कब से, जब चौथा युग कलयुग तामसी बनना शुरू होता है। क्या करता है औरंगजेब, है अपने बाप को ही जेल में डाल देता है। और ये परंपरा आगे चल करके गहराती जाती है या हल्की होती जाती है, गहराती जाती है। यहाँ तक के विदेशियों में कहीं भी जाकर के देख लो, बच्चे माँ बाप को कोई वैल्यू नहीं देते। इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे पांव पहला के भूल दिया, संग धड़ाधड़ भूल दिया, कैसे है, अरे बताओ। इस मनुष्य सृष्टि का बाप एक ही है, 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण है। जो कृष्ण है वो आत्मा संगम युग में ये क्रिश्चियंस की परंपरा डालती है, क्या है क्या परंपरा है? जो क्राइस्ट की राशि कृष्ण के साथ मिलाई जाती है, मिलाई जाती कि नहीं? तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई कि माँ के पिता को बच्चे कोई महत्व नहीं देते? किसको महत्व देते हैं? संगम युग में कैसे ये परंपरा शुरू हुई? ब्रॉड ड्रामा में भी बच्चे, खास क्रिश्चियंस धर्म में, माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं, बचपन से ही नहीं समझते। परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से। कैसे? कृष्ण वाली आत्मा क्या करती है? हैं? बाप को पहचानती ही नहीं, क्या समझती है? मैं ही गीता का भगवान हूँ। गीता माता उसका संरक्षण करने वाला मैं ही हूँ। पाति माने पति, संरक्षक। आज जो बच्चे हैं, खुदा न खास्ता बाप चला जाए तो बच्चे क्या समझ के बैठते हैं माँ के प्रति? माँ क्या समझती है? मेरी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले ये बच्चे ही हैं, ये बच्चा ही है। माता पूरी अधीन हो जाती है या बच्चों को अधीन करके रखती है? अधीन हो जाती है। माँ बाप का कोई मूल्य नहीं रहता। फाउंडेशन डालने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी यही हाल होता है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा आकर जब बोलती है, अव्यक्तवाणी चलाती है कि दिल्ली में बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो मुंह पे हाथ रख देती हैं। क्या? जैसे बैल के मुंह पे क्या लगाते हैं? मुसीका लगा देते हैं। मत बोलो, जो हम बोले वो बोलो। क्या बोलती है? बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? आप माउंट आबू में बैठे हैं। बेचारी माता कुछ जानती ही नहीं। ये हाल हो जाता है जब शूटिंग पीरियड में ऐसी शूटिंग होती है, तो ब्रॉड ड्रामा में भी इससे बदतर शूटिंग होगी या अच्छी शूटिंग हो? अब अच्छा ब्रॉड ड्रामा चलेगा है? अच्छा चलेगा, बदतर ही चलेगा। तो बताया, जो राजियों को पढ़ाया था, राजाओं का राजा बनाया था, वो बातें तो सारी पास्ट हो गई। कितना समय हुआ पास्ट हुए? 5000 वर्ष पुरानी कहानी हो गई, जब दुनिया सत्व प्रधान थी। 2500 वर्ष के बाद दुनिया रजो प्रधान हुई, फिर तमो प्रधान हो गई। वो बातें सारी पास्ट हो गई, सारी परंपराएं बदल गई। तो क्या साबित हुआ? परिवार को बनाने वाला कौन और परिवार को बिगाड़ने वाला कौन? वसुधैव कुटुंबकम्। ये सारी वसुधा कभी कुटुंब थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई थे। बाप मौजूद था तब थे या बिना बाप के भाई भाई थे? बाप मौजूद था तब भाई भाई थे। अभी उस बाप को भूल गए। भुलाने की शूटिंग किसने की? माया ने की है? किसने की? भारतवासियों ने की। माना भारत में जो वास करते थे मन बुद्धि से मन मना भव हो करके, उन भारतवासी बच्चों ने ये शूटिंग की जो मन मना भव हो करके भारत के मन बुद्धि में वास करते थे। भारतवासी थे ना, उन्होंने शूटिंग की। अरे गिरती कला की शूटिंग बाप करता है या बच्चे करते हैं? रचना करती है। कौन करता है? नई सृष्टि रची गई थी। पहले पत्तों का जब जन्म हुआ था तो चढ़ती कला के आधार पर हुआ था या उतरती कला के आधार पर हुआ था? लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या दिखाया गया है? हाँ, लक्ष्मी नारायण इंद्रियों का कोई सहारा नहीं लेते सुख लेने के लिए, ले रहे हैं। और राधा कृष्ण रचना क्या कर रही है? रचना क्या कर रही है? हाँ, ज्ञानेन्द्रियों का सहारा ले रही है सृष्टि रचना के लिए। ज्ञानेन्द्रियों से सुख लेती है। ज्ञानेन्द्रियां शरीर का हिस्सा है या नहीं है? ज्ञानेन्द्रियां शरीर का हिस्सा है, देह का हिस्सा है। देह विनाशी है या विनाशी है? तो देह का हिस्सा जिन्होंने जो सहारा जिन्होंने लिया वो आत्माएं खुद विनाश की ओर जाने वाली हैं और अपने फॉलोअर्स को भी विनाश की ओर उतरती कला की ओर ले जाती हैं। खुद 16 कला से नीचे उतरती हैं और अपने फॉलोअर्स प्रजा को भी नीचे उतार देती है। ऐसे उतरने की ब्रॉड ड्रामा में करतूत बढ़ती ही चली जाती है। तो उद्धार करने वाला बीज है या बीज की रचना है? उत, उत माने ऊपर, हर माने हरण करके, ऊपर हरण करके ले जाने वाला इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है या बच्चे हैं? बाप। वो बाप जो मनुष्य सृष्टि का पिता नारायण कहा जाता है। नारायण कहो भारत कहो, नार माने ज्ञान जल का घर में रहता है, भारत कहो माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा रहने वाला है वो आत्मा। क्या करती है? उद्धार करती है। और जो आत्मा है आधार मूर्त है, जड़ है, जैसे सतयुग के 7-8 नारायण जड़ हैं, आधार हैं या बीज हैं मनुष्य सृष्टि के? आधार हैं, वो जड़ें नीचे ले जाने वाली हैं, वो आठों ही नारायण द्वापर युग से तेजी से विधर्मियों के प्रभाव में आते हैं। जैसे इस्लाम धर्म का नारायण अब्राहिम की आत्मा इस्लाम धर्म का उतरेगा तो किस में प्रवेश करेगा, किसको आधार बनाएगा? इस्लाम धर्म के नारायण वाली आत्मा को आधार बनाता है। तो इस्लाम धर्म को प्रैक्टिकल में ले जाने वाला कौन सा मनुष्य शरीर है जो स्वयं नीचे जाता है? स्वधर्म निधनम से यह परधर्मो भयावह, जो स्वयं परधर्म इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, स्वधर्म देवी देवता सनातन धर्म को उसकी परंपराओं को भूल जाता है, तो जो जड़ है आधार है परिवार में कौन है? परिवार में कौन आधार है? माता। चाहे वो ग्रेट फादर्स की आधार हो और चाहे वो सामान्य परिवारों में आधार हो, अगर बाप की मत पर नहीं चलती है, मनमाना रास्ता पकड़ती है, मनमत पर चलती है, या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि दूसरे मनुष्यों की मत पर चल पड़ती है, मनुष्य मत पर चल पड़ती है, तो क्या बनती है? अबला बनती है या सबला बनती है? दास दासी बनकर के रहती है दूसरे धर्मों में वो आत्मा, या राजा रानी बन के रहती है? दास दासी बनकर रहती है, वो ही आत्मा है। जब इस मनुष्य शक्ति का बाप पुरुषार्थ करके याद का योगियों का ईश्वर बनती है, क्या बनती है? योगियों का ईश्वर है, ज्ञानियों का ईश्वर। ईश्वर माने शासन करता, प्रैक्टिकल में शासन करता, या सिर्फ बोल बोल करके छोड़ देता है? हैं? शिव बाप आते हैं, आत्माओं का बाप, वो बोल बोल करके 80 साल छोड़ देते हैं, या पुलिस बल मिलिट्री बल तैयार करते हैं, हैं? के मार पिटाई करते हैं, कुछ करते हैं, साधारण तरीके से सिर्फ बोलते हैं प्यार पूर्वक, जबरदस्ती करते हैं, शासन करते? अरे शासन नहीं करते। फिर शासक कौन है? वो शासक बनाते हैं या शासन करते हैं? बनाते हैं। जिसको शासक बनाते हैं वो भी बाप समान। भिखमंगा दिखाया जाता है या ताजदारी राजा दिखाया जाता है? भिखमंगा बैगर दिखाया जाता है, उसकी धारणा शक्ति फिर भी ताजदारी है। क्या क्या है? ताजधारी। कौन सा ताजधारी है? पवित्रता की जिम्मेवारी का ताजधारी, पवित्रता से होती है स्थापना, अपवित्रता से होता है विनाश। तो वो स्वयं ताज नहीं धारण करता, क्या स्वयं ग्लानी का ताज धारण करता है, कलंकीधर बनता है या ताज धारण करता है? कलंकीधर बनता है। वास्तव में बच्चों को दिग्पाल बनाता है, क्या सर के ऊपर धारण करता है, कितने बच्चे? 8 बच्चों को 8 दिशाओं का मालिक बनाता है। ये नई दुनिया की राजधानी की बात है, द्वापर कलयुग की बात नहीं। तो देखो, बाप ने जो राजयोग सिखाया था, जिस राजयोग में गुह्यात गुह्य तरम ज्ञानम, गुह्य तो एक गुह्य राज भरे हुए हैं ज्ञान के, वो राज को सिखाने वाला, प्रैक्टिकल में पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन साबित होता है? ज्ञानियों को कौन शासित करता है और योगियों को कौन शासित करता है? उनका शासक बनकर रहता है शिव। कौन रहता है? जिसको आप समान बना कर जाता है, वही शास्त्रों में भी ब्रह्मा का पहला पुत्र, बड़ा पुत्र सनक कुमार, जिसके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है, सत्य सनातन धर्म, जिस धर्म का कभी विनाश नहीं हो पाता। वो आत्मा निमित्त बनती है, शिव निमित्त निमित्त नहीं बनता, निमित्त माने साकार। इसीलिए उसकी यादगार शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है, जिस शिवलिंग में लिंग रूप 5 तत्वों का संघात, बड़ा रूप लिंग भी है, क्या बड़ा रूप लिंग भी है और 5 तत्वों के संघात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नमूने में उस मूर्ति में जिसे अमूर्त कहा गया, वो आत्मा भी मौजूद है। कौन सी आत्मा? जो दुनिया का बड़े से बड़ा शासक है। कौन? कौन? शंकर नहीं, राम नहीं, वो त्रेता वाला। मुरली में क्या बोला? वो त्रेता वाला राम नहीं, क्योंकि त्रेता में जो राम बनती है वो तो वो आत्मा बनती है जो अर्धांगिनी बनने के कारण आधा अंग हमारा पुरुषार्थ का, पवित्रता का, और आधा अंग तुम्हारा ज्ञान का, जो तुमने ज्ञान धारण किया मनन चिंतन मंथन करके, आधा आधा है ना, तो अर्धांगिनी हुई ना। वो अर्धांगिनी त्रेता में क्या बनती है? राम। वो त्रेता वाला राम नहीं, कौन सा राम? संगमयुग राम, जिसे राम शब्द का अर्थ यह है, रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसकी याद में रह करके मस्त हो जाते हैं, अति इंद्रिय सुख में क्या हो जाते हैं? विभोर हो जाते हैं। कैसा सुख? अति इंद्रिय सुख। तो बताया, वो टाइम जिसमें राजाओं का राजा बनाया था, गुहे ते गुहे ज्ञान से रहा सुनाकर, ज्ञान की राज सुनाकर, गुहे ते गुहे पार्ट बजाने वाले बाप का परिचय देकर। कौन है गुहे ते गुहे पार्ट बजाने वाला बाप? जिस बाप को 80 साल के बाद ब्राह्मण पहचान पाते हैं, है? उसका नाम राम है, है? प्रजापिता। वो तो 500 करोड़ पतितात्माओं का भी पिता है, वो है कौन? जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। क्या कहते हैं? शिव शंकर। शिव माने आत्मा, शिव माने आत्मा, और शंकर माने शंकरण। किसका किसका संकरण? पांच तत्वों का संकरण। क्या लिंग में क्या है? हैं? पांच तत्वों का सार रूप संकरण है। ऐसा संकरण जो कभी नष्ट नष्ट नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता। जिस सार में से इतना विशाल रूप धारण करने वाली सृष्टि, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का संघात संसार के सामने देखने में आता है, और उस लिंग रूप में वास करने वाली जो चैतन्य आत्मा है, कौन कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा? आत्मा वही है पुरुषार्थी शंकर की, लेकिन कैसी आत्मा है? अरे संपन्न आत्मा। कैसी आत्मा? संपन्न आत्मा। वो मंदिर में पूजी जाती है, उस मंदिर में जो यादगार आज दिखाई जाती है, उस मंदिर का सात्य के यादगार द्वापर के आदि में बना था। क्या? सोमनाथ मंदिर, जिसमें लाल पत्थर का लिंग था बड़ा रूप, और उसमें हीरा जड़ा हुआ था। उसकी पूजा होती थी कि नहीं? है? लिंग की पूजा होती थी कि साथ में हीरे की भी पूजा होती थी? है? हीरे की होती है, लिंग की नहीं? लिंग की भी पूजा होती थी और हीरे की भी पूजा होती थी। वो प्रवृत्ति मार्ग का यादगार है, जिसके लिए मंदिर में घुसते ही कहते हैं त्वमेव माता क्या पिता त्वमेव। त्वम माने तू एक। क्या संस्कृत में त्वम किसे कहा जाता है? एक को, दो या चार आठ को? एक को। तो कौन एक है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा वो तो त्रेता युग में है। हाँ, संगम युग में वो ही शंकर वाली आत्मा का संपन्न रूप, जो शिव समान रूप धारण कर लेता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वो आत्मा पूजनीय बन जाती है। शिव बाप कहते हैं, न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। पूज्य भी नहीं, मैं पूजने योग्य नहीं हूं। क्यों है? हाँ, इसलिए पूजनीय नहीं हूँ कि मैं तो बड़े से बड़ा सन्यासी हूँ।
क्या हूँ?
हैं? सिंगल हूँ या डबल हूँ? मैं तो सदा सिंगल हूँ। 5000 साल सन्यास बन करके जीवन जीवन तो है ही नहीं, सन्यास ही बन करके रहता हूँ मैं आत्मा। तो भगवान इस सृष्टि पर आता है तो प्रवृत्ति में आता है, प्रवृत्ति वालों को सिखाता है, या निवृत्ति में आता है निवृत्ति वालों को सिखाता है? हैं? प्रवृत्ति वालों को सिखाता है। तो वो कौन सा रूप है? है जिसका परिचय देने के लिए बोला त्रिमूर्ति में, और आज तक न ब्रह्मा कुमार परिचय दे पाए और न प्रजापिता ब्रह्मा कुमार उसका परिचय दे पाए। बाबा कहते हैं टिक टिक अपन ही करते रहते हैं। क्या करते रहते है? क्या करते रहते? टिक टिक करते रहते हैं।
अरे
कोई टिक टिक नामधारी है? कार्तिकेय, 6 मुख वाला, 6 तरह की बातें करता है, माने सब धर्मों का पोषण करता है जो सन्यास धर्म के हैं। भक्ति मार्ग का सन्यासी है या माँ बाप की तरह गृहस्थी है? हैं? सन्यासी है। तो मैं सन्यासी बनकर नहीं आता हूँ, मैं प्रवृत्ति मार्ग का बनकर के आता हूँ और प्रवृत्ति मार्ग के बच्चों को सिखाता हूँ, और प्रवृत्ति मार्ग के बच्चों को सिखा करके क्या बनाता हूँ? है राजाओं का राजा बनाता हूँ। ओम शांति।